जिज्ञासितं सुसंपन्नं अपि ते महदद्भुतम् कृतवान् भारतं यस्त्वम् सर्वार्थ परिब्रूहितम् कृतवान् भारतं यस्त्वम् सर्वार्थ परिब्रूहितम् मदनमो तो आप सभी भक्तों का इस भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन सुबह 8 बजे श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस भागवत क्लास को करने को कहा था कि प्रतिदिन सुबह में भागवत क्लास होना चाहिए। हालांकि कई जगह पर हाउस प्रोग्राम होते हैं तो वहां पे रात को 9 बजे के बाद या 10 बजे या 8 बजे प्रोग्राम्स होते हैं। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो सत्व गुण में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हे अर्जुन, सत्वात संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच। सत्व गुण में ही भगवान के विषय में शुद्ध ज्ञान हमारे हृदय में टिक सकता है। कोई भी कार्य हम जो भक्ति का कोई भी कार्य है वो सुबह के समय में करते हैं तो वो पूर्णदायक फल देता है। जैसे कोई बिजनेसमैन है और वो रात को 12 बजे के बाद बिजनेस करेगा तो उसका बिजनेस होगा नहीं होगा। उसके लिए रजोगुण की जरूरत है, तमोगुण की जरूरत नहीं है। रजोगुण कब होता है तो कहते हैं 10 बजे के बाद रजोगुण चालू हो जाता है, 9-10 बजे के बाद। उस समय में आप अपना जो बिजनेस है आप करोगे तो आपका बिजनेस परफेक्ट चलेगा। तमोगुण में जो गलत कार्य करना, नशा करना, जुआ खेलना, वो तमोगुण में ही अच्छा लगता है। दिन में कोई बियर बार और कोई खुलते नहीं है, जब रात होती है ना 8 बजे के बाद तो धीरे धीरे सब बियर बार खोलने लगते हैं रात को 3 बजे तक। तो ये कौन सा है तो कहते हैं तमोगुण का समय होता है। तो उस समय तमोगुण हावी होता है तो उसमें हमको हेल्प मिलती है तमोगुण की। उसमें जो तमोगुणी व्यक्ति है उसे और आनंद प्राप्त होता है। और रजोगुण में अगर कोई बिजनेस का कार्य करता है तो उसे वो बिजनेस करने में और आनंद आएगा। वैसे ही सत्वगुण में अगर हम भक्ति का कार्य करते हैं ना तो हमें और आनंद आएगा, और उत्साह आएगा। लेकिन वही कार्य भक्ति युक्त कार्य आप घर पे रख के या कहीं भी करो, सत्संग में भी देखिए किसी का भी मन नहीं लगेगा। लेकिन सत्वगुण में अगर हम मंदिर में बैठे भगवान की कथा सुनेंगे, नाम जप करेंगे तो ऑटोमेटिक अपना 16 माला जप हो जाएगा। मंगला आरती, श्रृंगार आरती जो भी है, जो प्रभुपाद जी ने जो हमें ये शेड्यूल दिया है। और कहते हैं कि जो सुबह का जो कार्यक्रम जो अटेंड करता है उसे लगभग 80% भक्ति पूरे दिन की हो जाती है केवल 4-5 घंटे में। तो सत्वगुण में हमें ये आध्यात्मिक कार्य है ना सत्वगुण में संपन्न कर लेना चाहिए सुबह 9 बजे तक। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इस्कॉन संस्था में श्री प्रभुपाद जी की छत्र छाया में ये भगवान का विशुद्ध लीला रचित श्रीमद् भागवतम का प्रतिदिन रसास्वादन करने को मिल रहा है। कहते एक अक्षर भी इसे कोई श्रवण कर लेना तो जीव का उद्धार हो जाएगा और उसे कृष्ण प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा, अगर पूर्ण श्रद्धा है तो, पूर्ण विश्वास है तो। तो यहां पर इस श्लोक में वेदव्यास जी को श्री नारद मुनि कहते हैं कि जिज्ञासितम सुसंपन्नम। आप में पूर्णतया जिज्ञासा भी है और आप सुसंपन्न है, हर कार्य करने में दक्ष है। और कहते हैं अपि ते महद अद्भुतम, और आप अद्भुत नहीं, आप तो कहते हैं महद अद्भुतम है। कृतवान भारतम यस्यम, और आपने महाभारत जैसे वेद ग्रंथ का निर्माण किया है, इसलिए आप कोई साधारण मत समझो अपने आप को। और सर्वार्थम अपि ब्रूहितम, और आप सब कुछ जानते हो फिर भी आप शोक युक्त क्यों हो। नारद मुनि ने ये सब उनकी गुणगान गाते हैं। तो दूसरे श्लोक में कहते हैं, सेकंड नंबर का श्लोक है उसमें कहते हैं पाराशर्य महाभाग, नारद मुनि जब पधारे तो जब उनको आसन दिया तो कहते, उनका गुणगान गाते हुए कहते हैं, हे पराशर्य महाभागवन, हे पराशर मुनि के पुत्र आप कैसे हैं? तो कहते हैं महाभागवन। महाभाग का अर्थ होता है जो भगवान की जो शुद्ध भक्ति करता है उसे महाभाग कहते हैं। जिसके पास पूर्णतया धन है, ऐश्वर्य है, सुंदर पत्नी है, ऊंचा कुल है, उसे केवल भाग्यशाली कहते हैं। शास्त्र कहते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं कि वह व्यक्ति को केवल भाग्यशाली कहते के, नहीं कहते हैं, अरे आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, आपके पास इतना धन है, एसी गाड़ी बंगला धन। लेकिन अगर किसी के पास अगर कृष्ण भक्ति आ जाती है ना तो उसे महाभाग्यशाली कहते हैं। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कई लोग को कहते हैं कि आप मुनि हैं, तो मुनि का अर्थ होता है जो मौन रहे उसे मुनि कहते हैं। और इस संसार में बहुत सारे मौन हैं, क्योंकि शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है इसलिए कहते हैं कि मुनि है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहा गया है कि महामना, भागवत में आया है, परीक्षित महाराज और जो उनके जो श्रवण करने आए थे सब ऋषि मुनि, वे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महामना, अर्थात महामुनि कहते हैं। महामुनि का अर्थ क्या होता है? मुनि का अर्थ होता है जो मौन बैठ जाए, केवल शांत ध्यान में धरे, उसे मुनि कहते हैं। लेकिन जो भगवान के विषय में 2400 घंटा गुणगान गाए और आध्यात्मिक जगत का ही गुणगान गाए, भौतिक जगत का एक शब्द भी न बोले, उसे महामुनि कहते हैं। और सुखदेव गोस्वामी में ऐसे गुण है, परीक्षित में ऐसे गुण है, इसलिए परीक्षित को भी महामना कहा गया है। परीक्षित महामना। वैसे यहां पर कहते हैं कि हे पराशर्य महाभागवन, आप कितने महान भाग्यशाली हैं। इस संसार में तो कहते हैं कि इस संसार में तो लोगों को कहते हैं कि आपके पास कितना धन है, आप तो कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन हे वेदव्यास जी, आपने तो कितने सारे वेद और ग्रंथों का निर्माण किया है, इसलिए आप भाग्यशाली नहीं है, आप तो महाभाग, आप महान भाग्यशाली जीव है। तो नारद कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि आपने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए फिर भी आप दुखी और कष्ट क्यों हैं? आपको सुख क्यों नहीं आपके मन में? कई सारे लोग हैं इस संसार में जिनके रात दिन कितना अगाध परिश्रम करते हैं, यहां से वहां जाते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं और पूरा दिन संघर्ष करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत करते हैं। सुबह उनका एक ही सपना होता है कि मैं घर से बाहर निकलता हूं तो आज मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे मन में शांति आएगी, सुख मिलेगा। लेकिन शाम को जब आता है तो वह दुखी का दुखी ही रहता है, परेशान, चिंता, उपाधि, मैंने जो ये बिजनेस चालू किया है क्या उसमें मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए रात दिन चिंतन करता ही रहता है। किसका? तो कहते हैं संसार का। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, रात दिन यही चिंतन करता रहता है कि मैं सुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्यों मुझे सुख नहीं मिल रहा है, इसका कारण क्या है, ये संसार के जीव का, हर एक जीव का प्रश्न है। लेकिन ये प्रश्न घर पे नहीं मिलेगा, न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा, मॉल में भी नहीं मिलेगा, मेडिकल में भी नहीं मिलेगा, स्टेशन पे जाओ, बस डेपो में जाओ, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसका उत्तर केवल आपको प्रभुपाद जी के जो सेंटर है वहां पर मिलेगा, अर्थात श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता और रामायण में इसका उत्तर है। भगवद गीता में क्लियर बताया गया है, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये संसार मैंने दुख देने के लिए ही बनाया है, और यहां पर कोई व्यक्ति कहे कि मैं सुखी हो जाओ, वो कभी भी नहीं होगा, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो सुखी होगा नहीं। जैसे आप दरिया में समुद्र में जाओ तो वहां पे केवल पानी के अलावा वो कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचो कि यहाँ पे इतना सारा पानी क्यों है, अरे भाई आप समुद्र में हो तो समुद्र में पानी के अलावा और क्या मिलेगा। वैसे ही संसार में अगर कोई कहे कि मैं दुखी हूं तो सत बात सत्य वस्तु है, संसार में दुखी है। अगर कोई कहे कि मैं सुखी हूं तो ये रॉन्ग बात है। कोई ये कहे कि मैं सुखी हूं तो ये गलत बात है। आप लोग कई लोगों को पूछते होंगे कैम्सो कसा है, कैसे हो, हाउ आर यू, सब अलग अलग भाषा में कई लोग पूछते हैं, तो क्या सामने उत्तर मिलता है? कहते अच्छा हूं। लेकिन ऐसा कोई कहता है कि मैं सुखी हूं? कोई किसी ने भी आज तक कहा है? खाली ऐसा कह दे कि कैसे हो तो कहते अच्छा हूं, बस चल रहा है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। ऐसा कोई आज तक किसी ने नहीं कहा है कि मैं सुखी हूं। लेकिन जो कोई भगवान की जो भक्ति करता है ना, तो निरंतर वो सुख और आनंद अनुभव करता है, उसके हृदय में सुख का आनंद का अनुभव करता है। तो यहां पर कहते हैं कि वेदव्यास जी आप कैसे हैं? तो कहते हैं सुसंपन्नम, ये पांचवें श्लोक में कहते हैं आप सुसंपन्न है। सुसंपन्न का अर्थ होता है जो हर बात हर कार्य करने में पटु हो उसे सुसंपन्न कहते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक कार्य हो या भौतिक कार्य हो। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक गृहस्थ को आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में दोनों कार्य में पटु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर परिवार में कुछ प्रॉब्लम है और भक्ति करने का भक्ति अच्छी सी चल रही है, लेकिन दोनों दोनों जगह पे है ना ध्यान देना चाहिए गृहस्थ को। जैसे ट्रैक्टर का एक टायर बड़ा है एक टायर छोटा है, एक बाजू का छोटा टायर हो एक बाजू का बड़ा टायर हो तो गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि दोनों कार्य सही होना चाहिए, आपका गृहस्थ जीवन भी अच्छे से चलना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन भी अच्छे से चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर आप बाबा जी बन जाओ या सन्यासी बन जाओ या पूरा दिन भक्ति करो, घर में परिवार में समाज में ध्यान न दो। जब तक आपका गृहस्थ जीवन परफेक्ट नहीं चलेगा ना, तो आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा नहीं होगा। हमको ऐसा लगता है कि मैं पूरा दिन भजन करूं, लेकिन हमारी वो स्थिति नहीं है। परीक्षित महाराज जैसी, सुखदेव गोस्वामी, नरसिंह मेहता या हमारे शेख गोस्वामी, हमारी ये स्थिति नहीं है। लेकिन हमारा अगाध प्रयास तो होता है कि हम उस स्थिति पे पहुंचे, लेकिन हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी इंद्रिया अभी तक उस लेवल तक पहुंची नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक गृहस्थ तो कम से कम है ना हफ्ते में एक बार मंगला आरती में आना चाहिए, हफ्ते में एक बार मंगला आरती आना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए और कहां भी जहां भी समय मिले तो उसे कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु कैसे भी करके मैं इस गृहस्थ जीवन में से निकलकर आपका 2400 घंटा फुल टाइम प्रचार करूं। इस प्रकार से जब हम सच्ची प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी सुनते हैं। लेकिन अगर हम जबरदस्ती निकलने का प्रयास करेंगे तो एक दिन दो दिन एक हफ्ता या एक महीना होगा, एक महीने के बाद फिर से आप गृहस्थ जीवन में चले जाओगे। प्रभुपाद महाराज के एक शिष्य थे, वृंदावन में भजन कर रहे थे, सत्य घटना है। उन्होंने कहा कि हे प्रभुपाद महाराज, मैं तो अभी हरिदास ठाकुर की तरह 192 राउंड करना चाहता हूं, अभी मुझे सेवा नहीं करना है। प्रभुपाद महाराज ने कहा आप सेवा कीजिए, आपका धर्म सेवा करना ही है, सेवा करते करते आप भक्ति कीजिए। नहीं प्रभुपाद महाराज, राधा कुंड में सब लोग माला करते हैं, जप करते हैं, मैं भी राधा कुंड पे बैठ के जप करूंगा। प्रभुपाद महाराज ने बहुत समझाया, लेकिन वो शिष्य एक टचमस नहीं हुआ और अपनी बुद्धि से कार्य करने लगा। इसलिए वहां पर कहा गया कि जब तक गुरु हमें आदेश न दे तब तक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कई बार होते हैं कि शिष्य को ऐसा लगता है गुरु हमारा हित नहीं चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं ये है, लेकिन गुरु शिष्य की भविष्य देखता है कि आगे कर चल के कैसे करेगा भक्ति, इस प्रकार से उसे सेवा देते हैं। प्रभुपाद महाराज ने कहा कि आप अभी सेवा कीजिए, आपका वो स्थिति नहीं है। तो वह व्यक्ति जाके राधा कुंड पे जप करने लगा, 2 महीना तक किया जप, नो डाउट 2 महीना तक किया। तीसरे महीने भी सब लोग जाते हैं ना गोवर्धन परिक्रमा के लिए, तो चलो वो बाबा जी से मिलने को जाएंगे, कहाँ पे है, कहाँ पे कुटिया बनाई है। वो बाबा जी का कोई नामो निशानी नहीं है, पता चला तो वो आइलैंड पे जहाज पे सर्फिंग कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो हमारी जब तक ऊंची स्थिति न आए भक्ति में, तब तक हमें पूर्ण छोड़ना भी नहीं चाहिए, और गुरु के और भक्तों के सानिध्य में रहकर ही हमें भजन करना चाहिए। जैसे एक मशीन होता है करोड़ों रुपए का मशीन, उसमें से आप एक बोल्ट निकाल के अलग करके उसको बेच दो, उसका कुछ कीमत आएगा? वो मशीन में से बोल्ट निकाल के उसको भंगार में बेचो तो उसका कोई कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन वही बोल्ट को अगर मशीन में लगा के आप मशीन बेच दो तो बोल्ट है ना मशीन के भाव के बिकेगा। इसकी कीमत क्या है? तो कहते हैं करोड़ों रुपया कीमत है। वैसे ही हम अगर भक्तों के अलग से रहकर, गुरु से या भगवान से अलग रहकर कुछ अलग नया करना चाहेंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी, और हम भक्ति से तो निकल ही जाएंगे और हमारा जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है चालू का चालू ही रहेगा। जैसे ही संसार में सब लोग अलग अलग जीवन जीना चाहते हैं ना, भगवान से स्वतंत्र, देखिए क्या स्थिति है संसार की। वैसे ही ये संसार की ये दशा है। जैसे हमारी ये बॉडी है, ये बॉडी की आज लाखों करोड़ों रुपया कीमत है, लेकिन इसमें से एक उंगली काट के रख दो, उसका कुछ वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही हम भक्तों के संग में रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी भक्ति होएगी, लेकिन भक्तों से अलग रह के हम कुछ करेंगे कि नहीं, मैं तो अकेले भक्ति करूंगा, एकांत की हरेर भक्ति, तो उत्पाद एव कल्पते, भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है। इसलिए कहते हैं कि जब तक हमारी स्थिति न आए ऊंची, तब तक हमें भक्तों के संग में रहकर ही, जो हमें गुरु या हमारे मंदिर से या प्रेसिडेंट कोई भी हमें आदेश दे, उस प्रकार से हमें भजन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। नारद मुनि एक एक वाक्य में वेद व्यास जी की परीक्षा ले रहे हैं। हालांकि इस श्लोक में देखिए ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन इस श्लोक में कितनी कितनी सारी चीजें निकल रही है। कहते हैं महद अद्भुतम, आप कैसे हैं? तो कहते हैं महान, महद अद्भुत है, आपने इतना विशाल कार्य किया है कि आपने महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण किया है। इतनी बड़ी बात कही दी नारद मुनि ने। अगर किसी को आज संसार में कोई कह दे तो वो तो अपने आप को फूल जाएगा, वो तो 2 फुट ऊपर उड़ जाएगा। लेकिन वेद व्यास जी ऐसे नहीं है, सुन रहे हैं कि गुरु मुझे क्या कह रहे हैं, वो सुन रहे हैं। कहते हैं आपने कृतवान भारतम, कृतवान का अर्थ होता है आपने निर्माण किया। किसका? तो कहते हैं महाभारत, आपने महाभारत ग्रंथ का निर्माण किया है। लेकिन आगे 5वें श्लोक में कहते हैं कि हे प्रभो, हे वेद व्यास जी, आपने परमात्मा को जानने के लिए बहुत मेहनत की और आपने जान भी लिया है, फिर भी आपके हृदय में सुख और आनंद क्यों नहीं है? सभी चीजों का सार क्या है? परमात्मा को जान लेना, वेदों को पढ़ लेना, निर्माण करना, फिर भी आपको सुख और आनंद क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? इसका कारण एक ही है कि जीव के पास कृष्ण प्रेम धन नहीं है। इस संसार में बहुत सारी चीजें आप कर लीजिए, लेकिन जब तक आपके हृदय में कृष्ण प्रेम धन नहीं होगा ना, तब तक जीवन कुछ काम का नहीं है। ज्ञान से भगवान खुश नहीं होते हैं, हमारे हृदय में भी सुख नहीं मिलेगा, अधूरा है। उद्धव जी के पास बहुत ज्ञान था, इस संसार में सभी जगह पर उन्होंने पढ़ाई कर लिया था। हम हमारे लड़के को ऑस्ट्रेलिया पढ़ने को भेजते हैं, अमेरिका यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, लेकिन शास्त्र में वर्णन है कि उद्धव जी तो हेवन रिटर्न थे, स्वर्ग में बृहस्पति के पास पढ़ने गए थे। इतना सारा ज्ञान था, लेकिन भगवान ने सोचा कि ये तो केवल ज्ञान ही प्राप्त किया है, इसके हृदय में भक्ति नहीं है। तो भक्ति रूपी जब तक फल नहीं आएंगे हृदय में, तब तक जीवन कुछ काम का नहीं है। तब उद्धव जी को एक पत्र लिखकर भगवान ने भेजा कि जाओ आप ब्रज में, इतना केवल मेरा मैसेज लेकर जाओ। और उद्धव जी ने वो सेवा की, इसलिए उनको वो रिटर्न जब आए ने तो भगवान का शुद्ध प्रेम धन लेकर आए। इसलिए भगवान और गुरु जो हमें जो आदेश देते हैं ना, वो हमारे हित के लिए देते हैं। उद्धव जी को कहा कि आप ये पत्र लेकर गोपियों को दीजिए कि जल्दी ही आपके कृष्ण आएंगे। और उद्धव जी आते हैं, उद्धव जी जब ब्रज में आते हैं तो ब्रज की दशा, ब्रज की स्थिति देखते हैं। वहां पर भागवतम में दशम स्कंद में वर्णन है कि उद्धव जी देख रहे हैं कि जितने भी पत्ते हैं, झाड़ है, सब सूख गए हैं। हालांकि मथुरा से बाहर गए तो सब पूरे एकदम हरे भरे थे, लेकिन जैसे ही मथुरा में, मथुरा मंडल में जैसे प्रवेश किया, पूरे पेड़ है ना, पत्ते सब सूख गए थे, नदियां एकदम स्टेच्यू के समान हो गई, पत्थर के समान, और जितने भी पत्थर हैं सब पिघल रहे अर्थात रो रहे हैं। और कहा कि ये नदी कहां से बह के आ रही है। तब उन्होंने एड्रेस पूछा, पता पूछा कि नंद बाबा और यशोदा का घर कहां पर है। तो कुछ कुछ ग्वाल बाल ने कहा कि ये नदी जहां से आ रही है ना, वही नंद बाबा का घर है। तो देख रहे कि घर पे जैसे ही गए, कृष्ण के घर पे जहां पे कृष्ण बड़े हुए थे नंदगांव में, तो नंदगांव तो बहुत ऊपर है ना, तो वहां से सब नदी आ रही थी, बहती बहती। तो हम तो कोई सोचेंगे कि कोई बाथरूम का पानी आया होगा, नहीं, वो नंद बाबा और यशोदा मैया रो रहे थे कृष्ण के विरह में। जब ऐसी स्थिति उद्धव जी ने देखी तो उद्धव जी पूछने लगे कि हे माँ यशोदा, आप क्यों रो रहे हैं? तो हमारा जो पुत्र है हमसे अलग होकर चला गया है, जो हमारा प्रेम धन था वो हमसे बिछड़कर चला गया है। जब हमारा, हमसे प्रेम ही छूट गया है तो हमारे जीवन का लक्ष्य अभी क्या है, हम कैसे जिए। इस प्रकार से यशोदा और नंद बाबा दोनों कई कई घंटों तक बातें की, लेकिन वो बातें उद्धव जी के हृदय में टिकी नहीं। उद्धव जी का दिमाग ही कुछ काम नहीं करने लगा। तब उद्धव जी वहां से नीचे उतरे और रास्ते में देख रहे तो गोपियां सब बैठी हुई है। गोपियों के पास गए और गोपियों को कहा कि राधा रानी कहाँ है। तो कहा वहां पे बैठी है कुंज में। तो कहा कि मैं कृष्ण, कृष्ण ने मुझे एक पत्र दिया है और कहा है कि मैं, आप उनको सांत्वना दीजिए कि कृष्ण जल्दी ही आएंगे। तब उद्धव जी कहने लगे, क्या ये पूरे शास्त्रों का जो भगवद गीता में कहा है ना, न जायते मृत, सब कुछ पूरा आत्मा परमात्मा मन बुद्धि अहंकार जो जो भी ज्ञान है सब पूर्ण ज्ञान दे दिया। कहते आपके कृष्ण सभी जगह पर है, यत्र तत्र सर्वत्र, वो परमात्मा के रूप में आपके हृदय में भी विराजमान है। सब गोपियों ने कहा तो क्यों बोलते क्यों नहीं है, आपके परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, वही कृष्ण, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं, बोलना चाहिए ना, हम तो, हमको तो बोलते चालते कृष्ण चाहिए, क्या वो ला सकते हो, तो ये आपका ज्ञान क्लियर है, नहीं तो ये आपका ज्ञान कुछ काम का नहीं है। जैसे भगवद गीता कोर्स में कहते हैं ना, कोई व्यक्ति बाहर से पढ़ाई लिखाई करके आता है और नाव में बैठता है, तब नाविक को कहता है कि आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। हाँ, तो नाविक कहता है कि मुझे तो केवल नाव चलाना आता है, तुम्हारी 50% जीवन बेकार हो गया। फिर आगे कहता है कि क्या आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, तो कहता है नहीं, मुझे तो, मैं तो सादा गांव का लड़का हूँ, मुझे तो इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, तुम्हारा 75% जीवन बेकार हो गया। और जैसे ही नाव धीरे धीरे अंदर गई तो नाव हिलने डुलने लगी, तो व्यक्ति कहा नाव क्यों हिल रही है, तो व्यक्ति ने कहा कि अब कुछ ही देर में डूबने वाली है, तैरने को आता है नहीं, तो आपका 100% जीवन बेकार हो गया। वो गांव के लड़के ने कहा अगर आपको तैरना नहीं आता है ना, तो आपका 100% जीवन बेकार है। इसी प्रकार उद्धव जी को भी कह रहे हैं कि अगर आपका ये ज्ञान अगर कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है ना, कृष्ण प्रेम धन, तो आपका पूरा जीवन बेकार है। भले आपने स्वर्ग में बृहस्पति जी के पास विद्या प्राप्त की, सारे वेदों का ज्ञान ले लिया, पर हमें तो वही बंसीधारी द्विभुज कृष्ण का दर्शन करना है, उसके लिए हम तरस रही है। क्या वे ला सकती हो? तब उद्धव जी वहां पे दंग रह गए, चुप हो गए। तब उनको पता चला कि कृष्ण प्रेम धन क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है। और वहां पे उद्धव जी कहते हैं कि मुझे इस वृंदावन में है ना, एक घास के तिनके का जन्म मिल जाएगा ना तो मेरा जीवन सफल है। क्यों? क्योंकि वहां से जब गोपियां चलेगी ना तो उनके चरण की रज है ना मेरे मस्तक पर पड़ेगी और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आज भी उद्धव जी है ना तो गोवर्धन की तलेटी में एक घास के तिनके की तरह वहां पे रहते हैं, आज भी वर्तमान समय में। और सोचते हैं कि गोपी आएगी फूल तोड़ने तो उनके चरण की रज मेरे मस्तक पर पड़ेगी और मुझे वो कृष्ण प्रेम धन मिलेगा। हालांकि मैंने पूरा जीवन वेदों को पढ़ने में, सुनने में और स्मरण करने में पूरा जीवन बिताया, लेकिन कृष्ण प्रेम धन तो मुझसे करोड़ों किलोमीटर लंबा है। तो ये कृष्ण प्रेम धन भगवान ने उद्धव जी को दिलवाया। किसके द्वारा? गोपियों के द्वारा। कृष्ण के पास भी नहीं है, कृष्ण भी तरस रहे, इसलिए वही कृष्ण चैतन्य नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने घोर कृषे नमो। कृष्ण के पास कृष्ण प्रेम धन नहीं है, वो प्रेम धन राधा रानी के पास है और राधा रानी के हृदय चोरी करके वही कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए और इस संसार के सभी जीवों को दिया। जो अन्य युगों में कृष्ण प्रेम धन नहीं मिलता है, केवल भक्ति कीजिए, नाम जप कीजिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन कृष्ण प्रेम धन नहीं मिलता है। आप वेदों का अध्ययन कराते हैं, कई युगों में तपस्या कराते हैं, ध्यान कराते हैं, व्रत कराते हैं, उल्टा लटकाते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कई युगों के बाद आते हैं कृष्ण प्रेम धन देने के लिए। इसलिए कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अनर्पित चरिन चिराद करुण या अवतीर्ण कलो। बहुत बहुत सदियों के बाद चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम धन देने के लिए आए हैं। और देखिए भक्तों कि हम कितने भाग्यशाली के, महान भाग्यशाली है, भाग्यशाली नहीं है, हम कितने महान भाग्यशाली है, महद अद्भुत कि हमको वही कृष्ण प्रेम धन चैतन्य महाप्रभु की धारा में मिला है और वो भी केवल 550 वर्ष पहले की बात है। अगर युग की बात करें तो बहुत लंबा हो गया, ये तो केवल 550 वर्ष पहले की घटना है कि चैतन्य महाप्रभु हमारे से कितने करीब हैं। जब आने वाली पीढ़ियां, जब कलयुग और बढ़ेगा तब लोगों को पता चलेगा कि ये लोग कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में कितने नजदीक थे। ये है प्रभुपाद महाराज, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ बाबाजी महाराज, षड गोस्वामी, इन्होंने सब लोग ने कितने कितने महात्माओं का, भगवान का सब दर्शन किया होगा। 6 गोस्वामी ने साक्षात चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, कितने महान भाग्यशाली जीव हो गए। तो आगे कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, आपने तो परमात्मा का भी कहते आत्म साक्षात्कार कर लिया, फिर भी आपको शोक क्यों हो रहा है? तो आगे 5वें श्लोक में इस प्रकार से जब वर्णन हुआ तब वेदव्यास जी जिज्ञासा करते हैं, तो फिर आप ही मुझे बताइए मुझे क्या करना है, आप ही मुझे बताइए कि क्या करना है। क्योंकि देखिए यहां पर कहते हैं कि नारद मुनि कहते हैं कि आपने महाभारत का निर्माण किया है और महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, 4 वेदों का निर्माण किया, उपनिषद का निर्माण किया, फिर भी आप में सुख नहीं है, आनंद नहीं है। इसका कारण एक ही है कि आपके हृदय में कृष्ण प्रेम धन रूपी भागवत ग्रंथ नहीं है। जब तक आपके हृदय में भागवत रूपी धन नहीं आएगा ना, तब तक नारद मुनि कहते हैं आपको सुख और शांति नहीं मिलेगी। संसार का बहुत सारा ज्ञान है, न जाने कितने कितने मैगजीन और सब निकलते ही रहते हैं, कहते हैं ना न्यूज, ٹائمز آف انڈیا اور نہ جانے کتنے سارے نیوز، لیکن شام تک اولڈ ہو جاتے ہیں، اور صبح دوسرے دن صبح وہی پیپر پہ بچہ ڈٹی پیشاب کرتا ہے اور وہ کوڑے کچڑے میں چلا جاتا ہے. لیکن جو کرشن پریم روپی جو دھن ہے، جو بھاگوت ہے، وہ کروڑوں جنموں سے وہی الگ الگ رس کا آسوادن کراتا ہے. گیتا، بھاگوت، رامائن، آپ پرتیک شلوک لیجئے، یہی شلوک اگر کوئی دوسرے بھکت کو دیجئے تو الگ رس کا آسوادن کرائے گا آپ کو. کیونکہ ہر ایک شلوک میں کہتے ہیں پرتی پدم پورنامرتا سوادنم. چیتنیہ مہاپربھو جب دکشن بھارت میں دکشن بھارت کی یاترا کر رہے تھے، چترماس کر رہے تھے، تو وہاں سے پھر کاشی گئے تھے، اور کاشی میں بہت بڑے بڑے ودوانوں کی سبھا لگی تھی، پرکاشانند، سرسوتی، اور نہ جانے کتنے سارے بڑے بڑے سنیاسی مہا منڈلیشور تھے. ان کے پیچھے نام لکھا تھا 1008 108، الگ الگ لکھا ہوا تھا، لیکن چیتنیہ مہاپربھو کے پیچھے کچھ نہیں لکھا تھا. چیتنیہ مہاپربھو کو انویٹیشن دیا، مہاتما لوگ مہاتماؤں کو انویٹیشن دیتے کہ آپ ہمارے پروگرامس میں آئیے، ہماری سبھا میں آئیے. تو بڑے بڑے مٹھادیش تھے نا، اوپر بڑے بڑے ویاس پیٹ پہ بیٹھ گئے تھے، کہیں پر جگہ نہیں تھی. تو چیتنیہ مہاپربھو جہاں دروازہ ہوتا ہے وہاں پہ ایک باتھ روم تھا، ہاتھ پیر دھونے کا، جہاں پہ پیر دھو کے اندر جانا ہوتا ہے، تو وہیں پر کنارے پہ جا کے بیٹھ گئے چیتنیہ مہاپربھو. اور چیتنیہ مہاپربھو دنڈ بھی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ نتیانند پربھو نے توڑ دیا تھا دنڈ، کہ آپ کو دنڈ کی کیا آوشیکتا ہے، آپ تو ساکشات ایشور ہے. چیتنیہ مہاپربھو تو ان کے پاس دنڈ نہیں تھا، تو اس پرکار سے وہاں پر بیٹھے تھے، اور پرکاشانند سرسوتی آ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیوں بیٹھے، یہ تو گندی جگہ پہ، آپ کا ستھان تو اوپر ہے. تب چیتنیہ مہاپربھو کے کہتے ہیں کہ میں اسی ستھان پہ برابر ہوں، سرکشت ہوں، کیونکہ میرے گرو نے کہا ہے کہ یہی ستھان آپ کے لیے اچھا ہے. تب کہتے ہیں آپ، ہم نے سنا ہے کہ آپ پاگلوں کی طرح کیرتن کرتے ہیں، سنیاسی کو یہ شوبھا نہیں دیتا ہے، آپ سنیاسی ہیں، آپ ہماری برابری کے ہیں، تو آپ کو تو ویدوں کا ادھیان کرنا چاہیے. ہم کیسے ویدوں کا ادھیان کرتے ہیں، اپنیشدوں کا ادھیان کرنا چاہیے، پوراڑوں کا ادھیان کرنا چاہیے، تو پورا دن ویدوں کا ادھیان کرنا چاہیے، اور آپ یہ ہرے کرشن کیرتن کرتے رہتے ہیں پاگل کی طرح. تب کہتے ہیں کہ میرے گرو نے یہی کہا ہے کہ آپ ویدوں کا ادھیان کرنے میں اسمرتھ ہے، اس لیے ایک کام کیجئے، میں آپ کو ہرے کرشن مہا منتر دیتا ہوں، یہ مہا منتر جپی اور آپ کیرتن کریے. تب کہتے ہیں گرو مورے موہے مورکھ جانی، گرو نے مجھے مورکھ سمجھ کر کہا کہ آپ یہ مہا منتر کا کیرتن ہی کرنے میں سمرتھ ہے، اس لیے آپ یہ کیرتن ہی کیجئے. اور کہتے ہیں کہ یہ مہا منتر جپنے میں مجھے اتنا سکھ اور آنند ہو رہا ہے کہ میں آج پاگل ہو رہا ہوں. اس کے وشے میں، کرشن کے وشے میں، جپیتے جپیتے ہے من پاگل، جیسے جیسے میں منتر جپتا ہوں نا تو میں پاگل ہو رہا ہوں. کس چیز میں؟ تو کہتے کرشن کے وشے میں. تو یہ چیتنیہ مہاپربھو بتاتے اپنے جیون میں کہ آپ کتنے بھی ویدوں کا ادھیان کر لو، کیونکہ وید اتنے سارے ہیں کہ ہمارا پورا جیون بیت جائے گا، لیکن یہ ویدوں کی سماپتی نہیں ہوگی. ایک کیول مہابھارت میں 1,00,000 شلوک ہے، 1,00,000 شلوک آپ پڑھو گے، سمجھو گے، اس پورا سمجھتے سمجھتے آپ کا پورا جیون چلا جائے گا. کتنے لوگ ہیں جو جنان پراپت کر رہے ہیں لیکن آج تک پورے مہابھارت کو کیا 700 شلوک کی بھگوت گیتا کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے. 700 شلوک کی بھگوت گیتا آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، تو مہابھارت تو 1,00,000 شلوک ہے. الگ الگ پران میں، مارکنڈے پران میں 24,000 شلوک ہے، متیہ پران میں 18,000 شلوک ہے، ایسے 18 پران ہے، اس میں الگ الگ پران میں کسی میں 55,000 شلوک ہے، کسی میں 48,000 شلوک ہے، الگ الگ شلوک ہے. تو یہ شلوک ہم پڑھیں گے سمجھیں گے تو ہمارے جنموں کے جنم بیت جائیں گے، لیکن وہ جنان پورا نہیں ہوگا. تو چیتنیہ مہاپربھو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کلیوگ میں تو ایک شارٹ جیون ہے، چھوٹا سا، اس میں ہی اگر ہم جنان پراپت کریں گے تو کرشن پریم دھن کب پراپت کریں گے. اس لیے چیتنیہ مہاپربھو کہتے ہیں کہ کیول آپ چار نیم کا پالن کیجئے और 16 माला जप कीजिए, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु वहां से फिर दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं, तो वहां पे बड़े 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 जो ब्राह्मण जो विद्वान पंडित होते हैं ना, एक व्यक्ति के ऊपर हंस रहे थे, एक भक्त के ऊपर, क्योंकि वो भक्त को कुछ आता नहीं था, वो भगवद गीता ऐसे देख रहा था और पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन अनपढ़ था, क्योंकि वो भगवद गीता भी है ना उल्टी पढ़ रहा था। अभी अनपढ़ व्यक्ति को क्या काला अक्षर, लेकिन वो एकदम शुद्ध हृदय भाव से वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो बड़े बड़े विद्वान लोग ने कहा, अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू तो अनपढ़ है, गवार है, तुझे कुछ नहीं प्राप्त होगा। तब चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए, तो सभी लोगों को देखा और वो व्यक्ति को भी देखा, वो भक्त को भी देखा, तो भक्त ऐसे आगे का जो पोस्टर है ना वो देख रहा था और वो रो रहा था, और जो आंसू है ना वो पोस्टर पे गिर रहे थे। जैसे गोपियां रो रही थी वैसे वो भक्त भी रो रहा था। तो महाप्रभु ने पूछा कि आप ये पोस्टर देखकर क्यों रो रहे हैं? तब वो कहते हैं कि भले मुझे कोई भगवद गीता समझ में नहीं आई या मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये पोस्टर देखकर मुझे रोना आ रहा है कि इतने बड़े अखिल ब्रह्मांड के स्वामी जिसको पूरा पूरा दुनिया भज रहा है, पूरी दुनिया रात दिन चिंतन करती रहती है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण लोगों के चिंतन में हृदय में नहीं आते हैं, लेकिन वही कृष्ण साक्षात अखिल ब्रह्मांड के नायक ये अर्जुन का रथ चला रहे हैं, कितना बड़ा आश्चर्य है, इस बात पे मुझे रोना आ रहा है। तब चैतन्य महाप्रभु ने ताली बजाई और कहा कि जितने सारे विद्वान ने भगवद गीता पढ़ ली है लेकिन अभी भी उनका ज्ञान अधूरा है, भले तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन तुम्हारा ज्ञान पूर्ण है, तुम्हारी भक्ति पूर्ण है, निश्चित तुम्हें कृष्ण प्रेम धन मिल जाएगा। तो जितने भी सन्यासी महामंडलेश्वर थे सबको अहंकार था, लेकिन वेद व्यास जी के पास अहंकार नहीं है, शोक हो रहा है। यहाँ पे क्या कहा है, वेद व्यास जी को शोक है और गुरु की शरण में जा रहे हैं, इसलिए आगे आएगा श्लोक में कि नारद मुनि उन्हें शुद्ध ज्ञान और भक्ति देंगे। अगर हमारे हृदय में अहंकार और ईर्ष्या और ये सब भावना होगी, कहते ना ईगो, ये होगा तो जीवन में कभी भी भक्ति नहीं आएगी, लेकिन वेद व्यास जी की तरह अगर शरणागति का भाव होगा तो शुद्ध गुरु हमें शुद्ध ज्ञान और भक्ति देंगे। इस प्रकार से आगे नारद मुनि कहेंगे कि आपको आगे जीवन में क्या करना है, तो आगे कहेंगे कि आपको श्रीमद् भागवत जो भगवान ने व्रज में जो विशुद्ध लीला कथाएं की है, आप उस श्रीमद् भागवतम का निर्माण कीजिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। केवल दो श्लोक में बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताया सार सार चीज, इस श्लोक में क्या कहते हैं नारद मुनि। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न?